नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। अपने एक शब्द द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा, अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाई धरती आसमान। अपने एक शब्द द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा, अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है।
प्रिय मित्र, आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपने मित्रों को भी सुनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने कुछ खास विषयों पर अध्ययन किया था, जैसे यीशु का यरूशलेम के लिए रोना और यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी करना और शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देना। आज हम अपने अध्ययन को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 4 पद से आरंभ करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि यीशु इस युग के अभिलक्षण की रूपरेखा देते हैं। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। यहां पर वाक्यांश सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने या धोखा देने ना पाए, यह इस संपूर्ण युग की विशेषता है। प्रभु इस शब्द को सावधानी के रूप में देते हैं क्योंकि बहुत धोखे होंगे, विशेषकर सताव के समय में जब मसीही विरोधी प्रकट होगा। पत्रस हमें 2 पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में चेतावनी देते हैं और कहते हैं, परंतु उन लोगों के मध्य झूठे नबी भी उठ खड़े हुए, जैसा कि तुम्हारे मध्य में झूठे उपदेशक होंगे जो गुप्त रूप से घातक और विधर्मी शिक्षा का प्रचार करेंगे, यहाँ तक कि उस स्वामी को भी अस्वीकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया है, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने ऊपर विनाश ले आएंगे। मित्रों, हमें झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कोई हमारे दिनों में भविष्यवाणी करना आरंभ करता है तो हम मसीही लोग उसका वही पर तिरस्कार करते हैं और दृश्य से हटा सकते हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता इस समय के लिए नहीं है। जो भी हो, हमें झूठे शिक्षकों से सावधान रहने की आवश्यकता है, अर्थात सावधान रहना चाहिए, और वे एक बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर हैं। हमें उन्हें पवित्र शास्त्र के द्वारा परखना चाहिए। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि एक महिला जो जीवन बीमा के एक अच्छे पद पर कार्यरत थी, उसने एक खत में लिखा कि उसके एक अच्छे मित्र ने उसका एक गलत शिक्षक से परिचय करा दिया और अपने मित्र की कलीसिया में 1 वर्ष तक जाने के बाद उसने हमारे रेडियो बाइबल शिक्षा को सुना और पवित्र शास्त्र ने उसे गलत शिक्षक की गलतियों से सचेत किया। तब वह बताती है कि कैसे उसका पूरा परिवार एक अच्छी कलीसिया में गया जो उस क्षेत्र में थी। मेरे प्रिय मित्र, हमें गलत शिक्षाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। हम लोगों के दिनों में यह बहुत ही अधिक संख्या में हमारे चारों तरफ है। हमारे प्रभु चेतावनी देते हैं, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसके 5 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। मित्रों, इस युग के अंत में बहुत से लोग आकर दावा करेंगे कि वे मसीह हैं। इस प्रकार के लोग हमारे साथ वर्तमान समय में भी मौजूद हैं। मित्रों, इस पृथ्वी पर कोई भी पवित्र शहर नहीं है, परंतु किसी दिन प्रभु स्वर्ग के महापवित्र स्थान से इस पृथ्वी पर आएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। इस बात को याद रखना चाहिए कि अभी भी बहुत से मसीही विरोधी लोग हैं, परंतु इस युग के अंत में एक मसीही विरोधी आएगा जो मसीह का विरोध करेगा और वह अपने आप को एकमात्र अधिकारी घोषित करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे प्रभु जैतून पर्वत से नीचे इस युग के अंत को देख रहे थे और महान क्लेश या सताव के समय को भी, परंतु अपने आरंभ के उपदेश में वह इस दरार को हमें वर्तमान युग की कलीसिया की तस्वीर देने के द्वारा भरते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत से अच्छे बाइबल के शिक्षक हैं, मुझसे भी अच्छे, जो पद 5 से 8 की स्थिति को मानते हैं। वह क्लेश के समय की भी बात कर रहे हैं। इसलिए यदि आप मुझसे असहमत होना चाहते हैं तो आप एक बड़े अच्छे कंपनी में होंगे। जो भी हो, यह मेरा विचार है कि हमारे प्रभु महान क्लेश या सताव का संकेत नहीं दे रहे हैं जब तक कि हम इस अध्याय के पद 9 में नहीं पहुंच जाते। जैसे हम आगे पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 6 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। लड़ाई और लड़ाई की अफवाह किसी भी तरह इस युग के अंत का चिन्ह नहीं है। जहां पर शिष्य हैं, वहां से अंत के युग तक प्रभु दरार में पुल बांध रहे हैं। यह बहुत ही आसान है कि आप बड़े बड़े लड़ाइयों के बारे में सोचें। मानो हम युग के अंत में हैं, इसका निर्देश ही है, परंतु यह लड़ाइयां इस युग के अंत का चिन्ह नहीं है। पिछले कुछ हजार वर्षों में कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई और कई लड़ाइयां जो हमारे सामने हैं, और केवल लगभग 200 साल तक शांति रही। मैं जब छोटा था तो सुनता था कि कुछ लोग आपस में बातें करते थे कि इस युग का अंत है, इस विषय पर पुस्तकें छप गई हैं। पहला विश्व युद्ध इस प्रकार के विचारों को लाने का कारण बना, परंतु युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व भर के चारों तरफ निराशाएं थी। दूसरा विश्व युद्ध और अनुबम भी था। उस समय एक पास्टर ने अपने कलीसिया के लोगों से कहा कि अनेकों किताबें लिखी जाएंगी, प्रकाशित होंगी और कहेंगे कि हम संसार के अंत में थे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण से क्या आप कुछ जानते हैं? मैं गलत था। ढेर सारी पुस्तकों को छापा गया, वे सनसनीखेज थी। विश्व युद्ध द्वितीय होकर काफी समय हो गया और अभी भी युग का अंत नहीं आया। मित्रों, हमें प्रभु यीशु की सुनना चाहिए और सभी झूठे शिक्षकों को सुनना बंद कर देना चाहिए। हम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, परंतु इनसे हमें नहीं घबराना है, क्योंकि इन सब का होना आवश्यक है, फिर भी इस युग का अंत नहीं होगा। मित्रों, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि मनुष्य कभी लड़ाई की समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। राष्ट्रसंघ इस समस्या का समाधान नहीं कर सका, संयुक्त राज्य भी इसका समाधान नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक शांति का राजकुमार नहीं आता है, कोई शांति नहीं होगी। हम मत्तीरचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 7 और 8 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूंडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। मित्रों, ये सब संपूर्ण युग की विशेषता है और इसलिए ये युग के अंत के चिन्ह नहीं है। पद 6 में लिखा है, परंतु उस समय अंत न होगा। झूठे मसीह, लड़ाइयों की अफवाह, अकाल, महामारी और भूकंप समस्त कलीसियाई युग का चरित्र चित्रण करता है। परंतु जैसे जैसे हम युग के अंत के करीब पहुंचते हैं, तो वे स्पष्ट रूप से तीव्र किए जाएंगे। इस जनसंख्या की बढ़ती ने संसार को डरा दिया है और यह सच भी है। हजारों और लाखों की संख्या में लोग भूखमरी से मर रहे हैं और यह स्थिति बढ़ने वाली है। अभी तक अकाल का वह पुराना काला घोड़ा प्रकट नहीं हुआ है। देखें प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 5 और 6 पद में, परंतु इस युग के अंत में वह काला घोड़ा और उस पर सवार सामने नहीं आएंगे। आज जो कुछ भी हम देखते हैं, यह तो बस दुख की शुरुआत है। अगला पद हमारे प्रथम समय के शब्द से आरंभ होता है, चिन्ह के साथ क्लेश का आरंभ होना। अब प्रभु क्लेश के समय के बारे में कहना आरंभ करते हैं। मैं और आप कलीसिया के युग में जी रहे हैं, या पवित्र आत्मा के युग में, जैसा कि कुछ लोग इसे कहना पसंद करते हैं। बाइबल आज के संसार को 3 प्रकार के लोगों के दलों में विभाजित करती है। पहला यहूदी, दूसरा यूनानी और परमेश्वर की कलीसिया। देखें पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय और उसके 32 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम न यहूदियों, न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। इस युग में परमेश्वर लोगों को कलीसिया अर्थात तीसरा समूह तैयार करने के लिए अपने नाम के लिए यहूदी और यूनानी दोनों में से बुला रहे हैं, ताकि तीसरा समूह तैयार हो जाए जो कलीसिया है। और यह तीसरा समूह या दल है जिसे उठा लिए जाने के समय में संसार से उठा लिया जाएगा, तब महाक्लेश आरंभ होगा। और मैं विश्वास करता हूं कि पद 9 इस आरंभ के बारे में कहता है। हम मत्तीरचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 9 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर रखेंगे। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। यहां पर तुम्हें या तुम कौन है? स्पष्ट रूप से वह कलीसिया को नहीं कह रहे हैं, परंतु इसराइल राष्ट्र को कह रहे हैं। जिस क्लेश की वो बात कर रहे हैं, वह विश्वव्यापी स्तर पर मसीहियों के विरोध में होगा। मित्रों, इस समय मैं एक महत्वपूर्ण सत्य को बताना चाहता हूं, जो हमारे दिनों के मसीहियों के लिए है। जब तक एक सच्ची कलीसिया संसार में है, तब तक कोई भी विश्वव्यापी विरोध नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया इसे रोकेगी या प्रतिरोध करेगी। जो प्रभु यीशु में एक सच्चा विश्वासी है तो वह यहूदियों से घृणा नहीं कर सकता। यह एक असंभव बात है। मेरा यह मानना है कि कलीसिया का उदारवाद भाग यहूदियों के सामने झूठी बात को प्रस्तुत कर रहा है और अंतिम विश्लेषण में यह उनके विरोध हो जाएगा। परंतु जब तक सच्ची कलीसिया पृथ्वी पर है, कोई भी विश्वव्यापी विरोध या वाद नहीं होगा। यह कलीसिया पृथ्वी से उठा लिए जाने के बाद आरंभ होगा। हम मत्तयी सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 10 और 11 पद में आगे पढ़ते हैं। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मित्रों, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि कलीसिया को झूठे शिक्षकों के विरोध सावधान किया गया है, जबकि इसराइल को झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रति सावधान किया गया है। तो यहां पर कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद में चेतावनी दी गई है झूठे भविष्यवक्ताओं के विरोध में। हम मत्तयी सुसमाचार 24 और उसके 12 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यह एक सिद्धांत है और ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं जो इस जैतून उपदेश में हैं, जिसे हम हमारे दिनों के लिए लागू कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैं एक व्यक्ति से मिला जो मेरे साथ पढ़ता था और अब वो प्रचार का कार्य करता है, लेकिन अब उसका धर्म विज्ञान उदारवादी हो गया है। वह शराब पीता है, सिगरेट पीता है और जैसे बाकी दुनिया के लोग रहते हैं वैसे ही वह भी जीता है। उसने कहा कि मित्र, इन सारी बातों का विरोध मत करो, परंतु इसमें शामिल हो जाओ, अर्थात जुड़ जाओ। उसने यह भी बताया कि उसकी कलीसिया में किस प्रकार के पापमय कार्य प्रवेश कर गए हैं और वह उनसे लड़ने की कोई योजना नहीं बना रहा है। मित्रों, जब दुष्टता भरपूर होती है तो बहुतों का प्रेम भी ठंडा पड़ जाता है और यह अंतकाल के समय में और भी अधिक सच होगा। अगला पद कुछ लोगों के लिए बहुत चौंकाने वाला है, जिसे हम मत्तयी सुसमाचार 24 अध्याय उसके 13 पद में पाते हैं। लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब प्रश्न यह है कि कौन अंत तक धीरज धरे रहेगा। ठीक है, जब हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो मैं पाता हूं कि परमेश्वर सभी प्राकृतिक और दुष्शक्ति को रोक देंगे और यहां तक कि अच्छाई की शक्ति को भी, जब वह एक निश्चित संख्या के लोगों पर मुहर लगाएंगे तब तक के लिए। इसलिए कौन अंत तक धीरज धरे रहेगा, अर्थात वे लोग जिन पर उसने आरंभ में ही मुहर लगा दी है। सभी युगों का अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को अंत तक लाएगा। जब वह 100 भेड़ों के साथ आरंभ करता है तो वह 100 भेड़ों के साथ भी आता है। जब कोई मुझसे कहता है कि फलना व्यक्ति कलीसिया में बहुत ही क्रियाशील था, वह पाप में चला गया है, क्या वह उद्धार पाया हुआ है? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं नहीं जानता हूं। हमें इसके लिए इंतजार करना होगा कि क्या होता है। मैं अक्सर लोगों से कहते हुए सुनता हूं कि सूरों का अंत आखिरकार सूरों के बाड़े में ही होगा और उड़ाव पुत्र अपने पिता के घर का मार्ग फिर से पाएंगे। एक पुत्र को सूअर के बाड़े में और एक सूअर को पिता के घर में पाना भ्रम में डालता है। दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 22 पद में पत्रस कहता है, नहलाए हुए सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए लौट जाती है। मित्रों, हम इस प्रकार से कहते हैं कि उड़ाव पुत्र के साथ एक सुअर का बच्चा पिता के घर को जाता है। उसे अच्छा से रगड़कर साफ किया गया और उसके दांतों को पेप्सोडेंट से ब्रश किया गया और उसके गर्दन के चारों तरफ गुलाबी रंग का फीता बांधा गया, परंतु वह पिता के घर में नहीं रुकेगा। जल्दी या कुछ समय के बाद वह अपने सुअर के बाड़े में लौट जाएगा जहां का वह है। वह जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आपको बस इंतजार करना है और देखना है कि कभी कभी एक पुत्र या एक मसीही सुअर के बाड़े में जाता है, परंतु वह एक पुत्र है, इसलिए किसी दिन वह वहां से बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अद्भुत चरवाहा है, उसी का उद्धार होगा, अर्थात जिसके पास चरवाहा है। मत्तयी सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 14 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मित्रों, राज्य का सुसमाचार जिसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, जिसे हम मत्तियरचित सुसमाचार 3:2 में देख सकते हैं। और प्रभु यीशु ने अपनी सेवा उसी संदेश से आरंभ की, जिसे हम मत्ती उसके 4:17 में पढ़ सकते हैं। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना आरंभ किया और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उसने अपने शिष्यों को भी इसी संदेश के साथ बाहर भेजा, जिसे हम मत्ती उसके 10 में देख सकते हैं। परंतु मत्ती 11:28 में हमने देखा कि हमारे प्रभु के संदेश में परिवर्तन आ गया। हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसने मत्तियरचित सुसमाचार 20:28 में कहा कि वह बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने के लिए आया है, परंतु क्लेश के समय फिर से राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। यह हमारे दिनों के लिए नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करना है। मित्रों, क्या राज्य का सुसमाचार कोई दूसरा सुसमाचार है? नहीं मेरे मित्रों, यह ऐसा नहीं है। यह एक ही सुसमाचार है, पर यह एक अलग महत्व के साथ है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम कहें कि स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। परंतु जब महान क्लेश आरंभ होता है, तब लोग जानेंगे कि वे इस युग के अंत के निकट हैं। यद्यपि वे न तो दिन के बारे में और न ही समय के बारे में जानेंगे, इसलिए संदेश इस प्रकार से होगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मित्रों, अब मुझे हमारे उन आलोचकों को उत्तर देने दीजिए जो कहते हैं कि हम जो शास्त्र के विद्वान हैं या विधान के विचार और शिक्षा को मानते हैं, तो 2 या उससे भी अधिक मार्ग उद्धार पाने के लिए हैं। जी नहीं, परमेश्वर के पास 1 से बढ़कर अधिक आधार नहीं है जिससे वह मनुष्यों को उद्धार देता है, और वह एक आधार है, मसीह का क्रूस। प्रत्येक भेड़ जो यीशु मसीह के आने से पहले चढ़ाई गई, वे यीशु मसीह के क्रूस की ओर निर्देशित करती है, और प्रत्येक जबकि वो इस संसार में आ गया है, हर एक स्मृत्व पीछे मुड़कर मसीह के क्रूस की ओर देखता है। इसे समझने के लिए आइए हम उत्पत्ति 4 में पीछे जाएं और उस भेंट को देखें जिसे हाबिल परमेश्वर के लिए लाया था। वह एक छोटे मेमने को लाया था। यदि आप वहां पर होते तो आपने हाबिल से पूछा होता कि आप क्यों इस छोटे मेमने को ला रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह छोटा मेमना आपके पापों को दूर कर सकता है? उसने कहा होता, ऐसा नहीं है, मैं इस छोटे मेमने को ला रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, मैं इसे विश्वास के द्वारा ला रहा हूं। तब आप उससे पूछते, ठीक है, यदि यह आपके पापों को दूर नहीं कर सकता है तो उसने आपको इसे लाने के लिए क्यों कहा? हाबिल का उत्तर कुछ इस प्रकार से होता, यह छोटा मेमना उसकी ओर इशारा करता है जो बाद में आने वाला है, स्त्री का वंश जो मेरी माँ से है, वह एक है जो हमारे पापों को हमसे अलग करेगा। मैं इस छोटे मेमने को विश्वास के द्वारा लाता हूँ, इस बात को स्वीकार करते हुए कि मैं एक पापी हूँ और मुझे मेरे स्थान को लेने वाले की आवश्यकता है। आप देखें कि हाबिल उस आने वाले की ओर देख रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मत्ती 3:2 में, परंतु उसने यह भी कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, यूहन्ना 1:29 में। यूहन्ना ने उसे पहचान लिया। यीशु मसीह के आने के पहले प्रत्येक जो परमेश्वर के पास उसके शर्तों पर आए, विश्वास पर बचा लिए गए, और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के आधार पर उनके पाप क्षमा किए गए। पुराने नियम में परमेश्वर ने कभी किसी को व्यवस्था के द्वारा नहीं बचाया। मूसा की विधि का मुख्य विधि बलिदान करना था। वे मेमना लाकर परमेश्वर के पास आए क्योंकि व्यवस्था ने प्रकट किया कि वे व्यवस्था का पालन नहीं किए थे, वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए उनके पापों की कीमत चुकाने के लिए किसी एक की आवश्यकता है जो उनके पापों के बदले में कीमत चुकाए। उन्हें व्यवस्था दिया गया इसलिए कि प्रत्येक मुंह बंद किया जाए और समस्त संसार परमेश्वर को लेखा देने वाला ठहरे। रोमियो के पत्री 3:19 में हम देखते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं और आप व्यवस्था को तोड़ने वाले हैं। हम सब पापी हैं और हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। बस आपको एक काम करना है कि आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, इससे पहले कि वह इस संसार का शासक बनकर आता है। उस समय वह आपका न्यायी होगा। अब हम उस पद में पीछे जाते हैं जिस पर हम विचार कर रहे थे। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जब कलीसिया इस संसार में है तो अंत नहीं आ सकता है। जब तक कि परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार जगत के छोर तक प्रचार नहीं किया जाता है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो इस पद को अपने बाइबल शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करते हैं, जबकि यह पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार प्रचार करने के लिए चाहने वाले इसके प्रशंसनीय हैं। यह वह पद नहीं है जिसे आप उन्नत होने के लिए उपयोग करें। मेरे मित्र, आप देखें कि पवित्र शास्त्र को उसके संदर्भ में व्याख्या करना कितना महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखें कि हमारे प्रभु प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इस युग के अंत का चिन्ह क्या होगा, जिसे हम पद 3 में देखते हैं। वह उस अंत के बारे में कह रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए आज हम अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस अध्ययन से अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और प्रभु के सत्य वचन से नई बातों को अपने जीवन में सीख रहे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है? क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप एक पापी हैं और यीशु मसीह आपके पापों के बदले में कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर चढ़ गए? पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। अब समय आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु एक न्याय के रूप में आने वाले हैं, वह आपका भी न्याय करेंगे। आज प्रभु के सामने अपने पापों को मान लें और उससे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। प्रभु आप सभी चाहने वालों की सहायता करें और अपनी शांति से आपको परिपूर्ण करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही